سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس میں ہم آخری ٹاپک کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ آپ نے سب سے پہلے اٹھا دیا تھا تو چلے نہیں. دونوں یہاں شور کر رہے ہیں بہت. اچھا، انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی. ہاں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں شہید؟ آپ ریحان کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو چیٹ کر لو. جی ریحان بولیے. ہاں، بہت اچھی بات بتائی آپ نے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تو بہت اچھا گمان تھا، لیکن اپنے ساتھ اتنا اچھا گمان نہیں تھا، اتنا بڑا گمان نہیں تھا اپنے بارے میں. ٹھیک ہے. ہاں جی حمزہ، پروپیگنڈا سے بچنے کی بھی بات کری تھی. اچھا، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ورسز ریویل فار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان آیات کا ترجمہ اور ایکسپلینیشن کرنے والے تھے ہم اس کلاس میں. یہاں پہ کوئی جواب نہیں آیا ہوا. جی، تو آپ لوگوں نے اچھے اچھے جواب دیے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ یعنی واقعہ افق پڑھ رہے ہیں کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقین نے، ہپوکرٹس نے، جھوٹا الزام لگایا تھا. اور اس الزام کے بارے میں سب نے جو ہے وہ، سب نے تو خیر نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں. اور اس کا اثر جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوا تھا، اور سارے ایمان والوں کے اوپر ہوا تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوا تھا. بہت دکھ میں مبتلا ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی زور سے بولیں تو پھر بولیں. ہاں، انہوں نے اسی لیے اپنے بیٹے کے لیے ایک بات کری تھی کہ اللہ اس کو تباہ کرے، برباد کرے، اس طرح کی نا، ایک دم چوٹ لگی تھی ان کو، تو انہوں نے ایک دم سے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کری. مستح رضی اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے بیٹے بھی اس میں شامل ہو گئے اس طرح کی باتیں بنانے میں. ٹھیک ہے جی. وہ بدری صحابہ تھے، اس وجہ سے ان کا گناہ شمار تو نہیں ہوا. مطلب شمار سے مطلب بدری صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، یعنی اگر یہ گناہ کریں گے بھی نا تو ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ لیں کہ گناہ لکھا گیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور یہاں پہ آگے بھی سارا واقعہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر کیا معاملہ کیا. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو آخری جو اسپیسیفک واقعہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا، انہوں نے مشورہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان دونوں نے مشورہ جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی دیا تھا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پاک ہیں اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پاک عورتیں ہی، صاف بالکل نیک پاک عورتیں ہی پسند کرنی ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مشورہ کیا دیا کہ آپ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کر لیجیے، ان سے پوچھ لیجیے عائشہ کے بارے میں. تو یہ بھی ایک پازیٹیو ہی مشورہ تھا، کیونکہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی بری بات تو کرنے ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک پازیٹیو ہی مشورہ تھا. تو جب یہ مشورے لے لیے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ باہر گئے اور مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے پھر انہوں نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میری کون مدد کرے گا اس شخص کے بارے میں. ٹھیک ہے، یعنی عبداللہ بن ابئی मुराद थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, उसके बाद फिर वो सारी थोड़ी सी आर्गुमेंटेशन वगैरह शुरू हो गई थी औस और खजरज कबीले के सरदारों के दरमियान, फिर वो सारा मामला खत्म हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम फिर क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि
अच्छा
आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास घर तशरीफ ले गए। किसके घर में थी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे रोमान रजी अल्लाह तआला अन्हा, यानी अपने अम्मी अब्बू के घर पर थी। ठीक है, तो वहां पे जाकर के नबी अलैहिस्सलाम ने आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से एक खिताब किया कि ए आयशा, अगर तुमसे कोई गलती हो गई है ना तो अल्लाह तआला से माफी मांग लो, अल्लाह तआला माफ कर देते हैं अपने बंदों को। ठीक है ना, गुनाह हो जाए तो भाई गुनाह के ऊपर लेके तो नहीं बैठ सकते ना, हमने तो गुनाह माफ करवाने हैं अल्लाह ताला से। ठीक है, तो अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, अल्लाह से माफी मांग लो, और अगर तुमने कोई गलती नहीं करी है तो अल्लाह ताला तुम्हारा केस जो है ना वो क्लियर कर देंगे, तुम्हारी बरात जो है वो लोगों के ऊपर खोल देंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर ना आयशा सिद्दीक अल्लाह ताला ना जो है वो बड़ा उनको, यानी एक अजीब उनके ऊपर रिएक्शन क्या हुआ था, क्या रिएक्शन हुआ उनके ऊपर इस बात का? जी आप बताए। नहीं, रिएक्शन उनके ऊपर एक बड़ा अजीब सा हुआ था।
उन्होंने कहा था
वो तो
अगर
उन्होंने जवाब दिया ना, रिएक्शन क्या हुआ था उनके ऊपर?
मैं
हाँ, उससे पहले जो है वो आंसू बहे चले जा रहे थे, बहे चले जा रहे थे, आंसू रुक ही के नहीं दे रहे थे, और ये वाली बात सुनने के बाद ना आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि मेरे आंसू एकदम रुक गए, है ना, और एक आंसू भी जो है वो आंख से नहीं निकलता था। और फिर उन्होंने कहा कि अब्बू से कहा कि अब्बू आप मेरी तरफ से इनको जवाब दें। अब्बू ने जवाब दिया कि मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या जवाब दूं अल्लाह के नबी को। अम्मी से बोला तो अम्मी ने भी जवाब दिया मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या जवाब दूं। तो फिर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद से जवाब दिया, ठीक है, कि अगर मैं अपने हक में कोई बात कहूंगी ना तो वो तो आप लोगों को, आप लोग मानेंगे ही उस बात को, और अगर मैं ये कह दूंगी कि हाँ मैंने कोई गुनाह कर लिया है तो आप लोग जो है ना पहले इस बात के लिए तैयार है कि हाँ जैसे कि मैंने कोई गलती करी है। ठीक है, तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ना उनके ऊपर ऐसा असर हो रहा था, इतना इतना ज्यादा जो है ना वो इस वक्त जो है वो टेंस थी। ठीक है, बात ही इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी बात थी कि जिसकी वजह से आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर, हजरत उम्मे रोमान, हत्ता के सारे जो मदीना मुनव्वरा के ईमान वाले थे, सब के सब इसकी वजह से मुतासिर हुए हुए थे, बात इतनी बड़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आयशा सिद्दीका तआला ने बस क्या कहा था कि फसबरुन जमील और वल्लाहुल मुस्तआनु इल्ला इला मा तसिफून, कि मैं बस सबर करूंगी और एक बहुत अच्छा वाला सबर करूंगी। क्या बहुत अच्छा वाला सबर होता है? अच्छा वाला सबर क्या होता है? सबरुन जमील का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? खूबसूरत सबर। सबरुन जमील का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर काफी मुश्किलात हो, ऐसा सबर नहीं है। सबर तो उसी वक्त होता है जब हमारे ऊपर मुश्किलात आती है। ठीक है, तो सबरुन जमील का मतलब ये होता है कि आप अपने मामले को अल्लाह ताला के हवाले करें। ठीक है ना, कि अल्लाह ताला फिर फैसला करेगा, अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा, और आप जो है ना वो कोई गुनाह का काम ना करें, कोई भी गुनाह का काम ना करें, और जो नेकियां आप पहले से कर रहे थे वो नेकियां आप करते रहें। ये नहीं हो कि मुश्किल आ गई तो अब जो है ना वो नेकी करनी छोड़ दी, मुश्किल आ गई तो अब जो है वो गुनाह करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, बल्कि नहीं, नेकियां करते रहें और गुनाहों से बचते रहें, और फैसला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें कि अल्लाह ताला कब मेरी मदद करेंगे, वो अल्लाह ताला की मर्जी है। ठीक है, चीखना चिल्लाना या लोगों से जो है वो हर वक्त शिकायतें करते रहना और फिर उसके बाद कहना कि मैं सब्र भी कर रहा हूँ, नहीं, ये सब्र जमील नहीं होता। ठीक है जी, हाँ, उन्होंने जब ये बात कही ना तो ये जो आयत पढ़ी थी उस आयत में पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि वही मैं वही बात कहूंगी जो यूसुफ के अब्बू ने कही थी। तो इस टेंशन की हालत में ना उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम भी याद नहीं आ रहा था, याकूब अलैहिस्सलाम का नाम उनको याद ही नहीं आ रहा था। ठीक है, इतना ज्यादा वो जो है वो इस मामले में फिक्रमंद हुई हुई थी। अच्छा, अजर वाला सवाल, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बातचीत हो गई, फिर आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना वो क्या था कि वो लेट गई थी जाकर, हाँ वो जाकर के बिस्तर पर लेट गई थी, और उनको अल्लाह ताला से यही उम्मीद थी कि अल्लाह ताला बस कुछ कर लेंगे जिसकी वजह से इनका नाम क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। ठीक है, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम उनके पास ही बैठे रहे, और इसी हालत में ना नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल होनी शुरू हो गई, कुरान मजीद की आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होनी शुरू हो गई। जब नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल होती थी तो उस वक्त ना नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल हालत आई हुई होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अच्छा ये जो मौसम था ना ये शदीद सर्दी का मौसम उलमा ने लिखा है, विंटर्स का टाइम था ये, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसीना आना शुरू हो गया, इतना पसीना आना शुरू हो गया कि पूरा जो पेशानी होती है ना ये जो फोरहेड होता है ये पसीने से भर गई। ठीक है, और अच्छा उस वक्त ये आयात किसी को सुनाई नहीं देती थी, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम को भी जो है ना वो शुरू में सिर्फ एक एक वाइब्रेशन और एक बज इस तरह की आवाज सुनाई देती। ठीक है, तो ये क्या हो रहा होता था, ये जो वही है ये कहाँ से आ रही होती थी, ये क्या चीज है, ये वही जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। ठीक है ना, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, आप अल्लाह ताला की ये बातें हैं। ठीक है ना, ये कहाँ से आ रही होती थी, ये आ रही होती थी एक रूहानी दुनिया से, एक स्पिरिचुअल रियल से। ठीक है ना, और हम किस रियल में रहते हैं, हम स्पिरिचुअल रियल में, हम रूहानी दुनिया के अंदर नहीं रहते, हम कहाँ रहते हैं, हम जिस्मानी दुनिया में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये रूहानी दुनिया की अजीम तरीन चीज अल्लाह ताला का कलाम। ठीक है ना, अल्लाह ताला का कलाम यानी ये फरिश्ता नहीं है, वही क्या है, ये कोई फरिश्ता कोई थोड़ी है, वही जो है वो कोई आसमान का कोई टुकड़ा, कोई कोई और चीज कोई थोड़ी है, वही तो जिसने सब कुछ बनाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो कि हर एक को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, हर एक को जो है वो जिंदगी देता है, फिर हर एक को जो है वो मौत देता है, जिसने कयामत को इस दुनिया के अंदर कायम करना है एक सूर के जरिए से, इतनी सबसे बड़ी जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, ये उसकी उसकी बात है ये। ठीक है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वही कुरान मजीद जो है आपको पता है ये क्या है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई कोई चीज है या क्या है ये। ब्यूटिफुल क्वेश्चन यंग, यू कैन डू दिस एंड ऑन स्क्रीन, वही मींस अल्लाह, नहीं नहीं वही डज नॉट मीन अल्लाह, ये अल्लाह ताला की एक क्वालिटी है, एक सिफत है अल्लाह ताला की। ठीक है, क्या मतलब सिफत अल्लाह ताला की, मतलब ये है कि जैसे कोई आदमी होता है, ठीक है ना, तो अब आदमी जो है वो मिसाल के तौर पर कोई बर्तन बना सकता है ना, कोई टॉय बना सकता है, कोई मशीन बना सकता है। ठीक है, तो ये जो मशीन उसने बनाई या टॉय उसने बनाया या उसने आप स्लाइम के जरिए से कोई चीज बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये कहलाएगी कि भाई आपने ये चीज मैन्युफैक्चर करी है। ठीक है ना, तखलीक का लफ्ज वैसे तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं आप, ये अलग चीज होती है। बहरहाल आपने एक चीज तखलीक करी, ये आपकी तखलीक है, ये आप तो नहीं है ना, या ये आपकी कोई क्वालिटी तो नहीं है ना, जो जो टॉय आपने बनाया, जो मशीन आपने बनाई, ये आपकी क्वालिटी तो नहीं है ना, ये तो आपकी एक तखलीक है। ठीक है ना, आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी क्वालिटी ये है कि आप जो है वो इतने लंबे हैं, आपका रंग जो है वो ऐसा है, आपकी जो है वो आवाज बड़ी अच्छी है या आपकी आवाज बड़ी मोटी है, ये आपकी क्वालिटीज है। ठीक है ना, तो क्वालिटी का ताल्लुक जो है ना वो जात के अपने साथ होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, क्वालिटी इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट, क्वालिटी इज नॉट समथिंग दैट यू क्रिएटेड, जो चीज आपने बनाई है वो आपकी क्वालिटी नहीं होती, वो तो आपकी क्रिएशन कहलाती है। ठीक है ना, कुरान मजीद अल्लाह ताला की क्रिएशन नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को बनाया, बल्कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की क्वालिटी है, अल्लाह ताला की सिफत है, इट्स पार्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला, नॉट इन द सेंस ऑफ बॉडी बट इट्स अ क्वालिटी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। अब ये अगर अलग डिस्कशन है कि ये जो कुरान मजीद हमारे हाथ में होता है ना, ये अल्लाह ताला की क्वालिटी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर जो अल्फाज हैं, जो इसकी आवाज है ना, जो अल्लाह ताला ने क्रिएट कर, जो अल्लाह ताला की मुंह के जो भी जैसा भी मुंह अल्लाह ताला का है हमें नहीं पता, तो वहां से जो चीज निकली ना वो कुरान मजीद है, जिसको कि हम फिर तिलावत करते हैं अपनी जुबान से, अपने मुंह से। ठीक है, बहरहाल कुरान मजीद इतनी अजीम तरीन चीज है वो रूहानी दुनिया से निकल करके जिस्मानी दुनिया में एक इंसान, नबी अलैहिस्सलाम क्या है? नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की सिफत नहीं है, क्या है नबी अलैहिस्सलाम? अल्लाह ताला की मखलूक है, राइट? अल्लाह ताला की क्रिएशन है नबी अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला की क्वालिटी उस नेक्स्ट वर्ड, उस वर्ड से लेकर के आ रही होती है और एक फिजिकल क्रिएशन के अंदर वो एंटर हो रही होती है, ठीक है? तो इस प्रोसेस में जो है ना, वो कैसे वो आ रही होती थी कि उसमें एक बज की आवाज क्रिएट हो रही होती थी जो नबी अलैहिस्सलाम को सुनाई दे रही होती थी, ठीक है? और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एक बहुत ज्यादा मुशक्कत वाला वक्त होता था, क्योंकि वो एक उस दुनिया की चीज इस दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक के अंदर आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसीना भी आ जाता था और नबी अलैहिस्सलाम का वेट जो था ना, वेट वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। हत्ता कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी के ऊपर बैठे होते थे ना, तो ऊँटनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ता था कि ऊँटनी बैठ जाती, खड़ी नहीं रह सकती थी उस वक्त जब वही नाजिल हो रही थी। या नबी अलैहिस्सलाम सलाम अगर किसी के, जैसे कि हम कभी किसी के टांग पे बैठ जाते हैं ना, कई दोस्त है भी और टांग उन्होंने फैलाई हुई थी उसके ऊपर बैठ गए, किसी के रान के ऊपर बैठ गए, तो उस शख्स की रान जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तशरीफ रखे हुए थे ना, जैसे आपने ऐसे करके रख दी कोई जो है वो एज अ सीट आपके रान के ऊपर बैठ गए, ठीक है ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की रान के ऊपर बैठे होते थे ना, उस शख्स को ऐसा लगता था कि मेरी रान टूट जाएगी, इतना वजन जो है ना वो पड़ना शुरू हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजन फिजिकली इंक्रीज नहीं हो रहा होता था, बल्कि वही अंदर दाखिल हो रही होती थी, इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजन बढ़ जाता था, पसीना आना शुरू हो जाता था, गर्मी लगनी शुरू हो जाती थी। कुरान इज द स्पीच ऑफ अल्लाह सुब्हान अल्लाह, बिल्कुल सही आपने फरमाया, ठीक है? तो आप सल्लम के ऊपर ऐसी कैफियत आ रही हुई। अच्छा, सहाबा कराम को पता था क्योंकि पहले भी इस तरह से बहुत दफा हो चुका था, तो जब आप सल्लम की ऐसी कैफियत हो गई ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहां पे मौजूद थे, उम्मे उम रोमान भी मौजूद थी और आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा भी मौजूद थी और कोई मौजूद नहीं था वहां पर, तो उनको पता चल गया कि आप सल्लम के ऊपर वही नाजिल हो रही है, ठीक है? तो आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई ना, तो मुझे तो कोई परवाह नहीं थी, मुझे तो कोई फिक्र नहीं थी कि क्या होगा, राइट? लेकिन मेरे अम्मी अब्बू को बहुत ज्यादा फिक्र थी कि इस वही के अंदर पता नहीं क्या होगा, ठीक है, पता नहीं क्या होगा इस वही के अंदर। तो अबू बकर सिद्दीक और उम्मे रोमान जो थे ना, वो नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे उनके ऊपर वही नाजिल हो रही है, ठीक है ना, तो एकदम परेशान हो जाते थे कि पता नहीं इस वही में क्या बताया जाएगा, क्या हमारी बेटी के हक में बात आएगी या हमारी बेटी के खिलाफ बात आएगी। इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे दोनों के दोनों, ठीक है? लेकिन फरमाती है कि जब वो मेरी तरफ देखते थे ना, तो मैं तो बड़े इत्मीनान के साथ बैठी हुई थी, आराम से, मतलब लेटी हुई थी वो, ठीक है ना, और मुझे तो पता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो कभी किसी ऐसे शख्स के ऊपर कि जिसने कोई गलत काम नहीं किया है, अल्लाह ताला उसके ऊपर कभी भी जुल्म नहीं करता। भाई किसी ने गलत काम नहीं किया, आपने उसको जो है वो गलत कहना शुरू कर दिया, तो ये तो जुल्म हो जाएगा ना, ये तो ऑपरेशन हो जाएगी ना। अल्लाह ताला तो किसी के ऊपर ऑपरेशन नहीं करते, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, तो इनको बिल्कुल इत्मीनान था क्योंकि इनको अपने बारे में पता था इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है? लेकिन अबू बकर सिद्दीक और उनकी अम्मी का ऐसा मामला नहीं था। अच्छा, जब वही का ये सिलसिला खत्म हुआ, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ना अपने माथे के ऊपर से, पेशानी मुबारक के ऊपर से पसीनों को पोंछ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर जो है ना वो मुस्कुराहट छा गई, खुश हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग गया था कि भाई वही क्या नाजिल हुई है, ठीक है? किसी दूसरे को देखें आवाज नहीं आई, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को वर्ड्स जो है ना वो अल्लाह ताला याद करवा दिया करते थे कि क्या वर्ड्स ऊपर से नाजिल हुए हैं, ठीक है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं इस तरफ देखा और पहला जुमला जो उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबशरी या आयशा, तुझे खुशखबरी हो ऐ आयशा, है ना, ग्लैड टाइडिंग्स, कांग्रेचुलेशंस कहते हैं ना, कांग्रेचुलेशंस ओ आयशा, ठीक है? फकद अनज़रल्लाहु बराअतकी, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बराअत को नाजिल कर दिया है। बराअत का मतलब बताया था पिछली क्लास के अंदर, क्या मतलब था बराअत का? हाँ, बरी कर देना। एक तो होता है शादी के अंदर बरी देते हैं, दूल्हा साहब को बरी मिलती है, दुल्हन साहिबा को जहेज मिलता है, ठीक है? तो बड़ी कर देने का क्या होता होता है आप बताइए। हाँ इनोसेंस डिक्लेयर कर देना, ठीक है ना, मासूम होना कि भाई इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लोग जो बुरी बातें कर रहे हैं ये सच नहीं है, ये इनोसेंट है, इसको कहते हैं बरी कर देना किसी को, ठीक है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बराअत को नाजिल फरमा दिया है, ठीक है। जब ये बात उनके अम्मी अबू ने सुनी ना, तो अम्मी ने फौरन कहा ए आयशा उठो और नबी अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करो, ठीक है, ये देखो नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें कितनी अच्छी खबर सुनाई है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला जो है ना, वो इस वक्त किसी दूसरे मोड में जा चुकी थी, ठीक है ना, किस मोड में जा चुकी थी, रोना धोना सब खत्म हो चुका था, ठीक है ना, और लोगों को जो भी इंसान मौजूद थे, अल्लाह के नबी भी थे, सिद्दीक भी थे, सिद्दीक की जो है वो अहलिया भी मौजूद थी, आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने सबको कह दिया था फसबरुन जमील वल्लाहु मुस्तआन, क्या था वल्लाहु मुस्तआनु अला मा तसिफून, है ना, मैं तो बस अल्लाह ताला के साथ सब्र करूंगी और अल्लाह ताला जो है ना वही मेरी मदद फरमाएंगे उन चीजों के खिलाफ जो कि तुम लोग मेरे बारे में सोच के बैठे हो। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला इस वक्त इस मोड में जा चुकी थी कि उन्होंने जो है ना वो अपने आप को सारी मखलूकात से जितनी मखलूक मौजूद थी उन सब से अपने आप को काट दिया था, और उन्होंने अपने आप को इस वक्त जो है ना वो डायरेक्ट खालिक के साथ जोड़ लिया, अल्लाह ताला के साथ जोड़ लिया था और अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले कर दिया था, ठीक है ना। मखलूक बेहतरीन मखलूक सामने मौजूद थी, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा अफजल और अरफा कोई दूसरी मखलूक हो ही नहीं सकती, लेकिन खालिक वो तो हर किस्म की मखलूक से अफजल है ना, अल्लाह ताला की तो बात ही कुछ और है, ठीक है। तो ये उस वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला के साथ जुड़ चुकी थी, तो इस वक्त जो है ना वो इनके ऊपर एक अजीब सी कैफियत आई हुई थी कि इनकी निगाहें इनकी नजर जो है ना वो हर एक से हट चुकी थी। जब अम्मी ने इनसे कहा ना कि उठो आयशा और जाकर के नबी अलैहिस्सलाम सलाम को शुक्र अदा करो, तो आयशा सिद्दीका ने जवाब दिया मैंने किसी का शुक्र अदा नहीं करना है, इसको मैंने किसी का शुक्रिया अदा नहीं करना है, मैंने तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करना है कि जिसने मुझे बरी किया इस मामले के अंदर, ठीक है। अच्छा ये जो उन्होंने बात कही ना, ये बात जो है वो उन्होंने सिर्फ इसी वजह से कही थी क्योंकि उनके ऊपर ये कैफियत तारी हुई थी, इसको कहते हैं हाल चढ़ जाना, हाल तारी हो जाना, ठीक है ना। और इस तरह की बात जो है वो सिर्फ इस तरह की कैफियत में ही कहना जायज है, उसके अलावा ये जायज ही नहीं है कि आप कहें कि मैं तो किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, हदीस मुबारक मौजूद है कि मन लम यशकुर नास लम यशकुर अल्लाह, कि जिसने इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं किया ना उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। कोई कहता है कि नहीं मैं तो किसी इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, भाई जो कुछ मिला है मुझे वो अल्लाह की तरफ से मिला है ना, मैं अब्बू का शुक्रिया क्यों अदा करूं, मैं अम्मी का शुक्रिया क्यों अदा करूं, मैं अपने टीचर का, अपने शेख का या अपने किसी दोस्त का शुक्रिया क्यों अदा करूं, है ना। ये तो खाली एक मीन्स था, मुझे तो इसके वास्ते से अल्लाह ने दिया है तो मैं तो सिर्फ अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि नहीं, ये शुक्रिया अदा करना होगा ही नहीं अल्लाह ताला का, ठीक है ना, क्योंकि इंसानों का शुक्रिया अदा करना ही जो है ना वो भी जरूरी है अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए, ठीक है ना। तो अल्लाह को कैसे खुश करना है, अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करना है, ये हमने अपनी अकल से नहीं फैसला करना बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके से हमने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, ठीक है। लेकिन जब किसी इंसान के ऊपर जेन्युइनली, ठीक है ना, हाल तारी हो जाता है ना, कैफियत ऐसी आ जाती है और सर्कमस्टांसिस की वजह से ऐसे हालात हुए थे, है ना, वरना मैं कहूँ कि नहीं गुस्सा आ गया, है ना, अब्बू पे गुस्सा आ गया, अम्मी पे गुस्सा आ गया, अब्बू ने ऐसी क्यों बात कही, अम्मी ने ऐसी क्यों बात कही, अब गुस्सा आ गया तो मैं कहूँ कि मेरे ऊपर हाल आ गया है, कौन सा हाल आ गया है, गुस्से का हाल आ गया है मेरे ऊपर, अब मैं अब्बू का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, अब मैं अम्मी का शुक्रिया, भाई आपके ऊपर ये जो हाल आया ना ये शैतानी वाला हाल है, इसको कहते हैं गुस्सा, ठीक है ना, और ये तो है ही हराम, तो हराम हाल की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब्बू अम्मी का और मैं अपने टीचर का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, मैं फलाने दोस्त का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर नाजायज या हराम कोई हाल बिल्कुल भी नहीं आया था, ये तो 100% जायज वाला हाल था और इस सिचुएशन की वजह से आया था, इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन की वजह से आया था ना, इस वजह से उनके लिए बात कहनी जायज थी। जी चीज बनाना क्वालिटी होती है, चीज बनाने की जो आपके अंदर एबिलिटी होती है वो आपकी क्वालिटी होती है। हाँ तो चीज तो क्वालिटी नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला की तखलीक की सिफत, ये अल्लाह ताला की सिफत है कि अल्लाह ताला हैज द एबिलिटी टू क्रिएट एवरीथिंग, है ना, हर चीज को बना सकते हैं। लेकिन जो चीज अल्लाह ने बना दी वो अल्लाह ताला की क्वालिटी नहीं, वो अल्लाह ताला की मखलूक कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो बंद भी नहीं कर सकते, गर्मी भी इतनी हो रही है, ठीक है। लेकिन होता यह है कि जब इधर से शोर आ रहा होता है ना, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, इस वजह से मुझे बहुत चीखना पड़ता है। ठीक है, पता नहीं आपको चीख की आवाज आ रही है या आपको नॉर्मल आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? सही आवाज आ रही है, नॉर्मल आवाज आ रही है। चले तो कुछ चीख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इसका एक हल होता है, वो हल भी है तो बड़ा साइंटिफिक और टेक्निकल किस्म का, लेकिन वो हल भी हमने अपने शेख साहब से सीखा, हजरत जी तआला का। ठीक है, वो क्या कि बोलने वालों को लगता है कि उसकी आवाज किसी के पास नहीं जा रही है, तो उसको बहुत चीखना पड़ता है। तो इसका हल ये होता है कि आप कोई माइक रख लें, हमारे पास माइक नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा अभी माइक लेकर जाए, लेकिन कोई माइक रख लें और उसका जो स्पीकर है ना वो पीछे रखें, उसकी डायरेक्शन स्पीकर की तरफ, ठीक है ना। तो उस स्पीकर से जब आवाज वापस आ रही होती है ना स्पीकर की तरफ, उस स्पीकर से इस असल स्पीकर की तरफ, तो उसको इत्मीनान हो जाता है कि हाँ भाई मेरी आवाज पहुंच रही है, अब वो चीखना नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स हमारे पास अभी है नहीं। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है, द एंजल जिब्राइल वुड ब्रिंग द वही, सो हाउ डिड दिस हैपन, एंजल जिब्राइल वुड ब्रिंग द वही, सो हाउ डिड दिस हैपन। हाँ, तो वही जो है वो एंजल जिब्राइल के मीडियम से के अंदर आ रही होती थी, ठीक है ना। यानी एंजल जिब्राइल जो है वो भी तो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ही है ना, वो भी तो रूही यानी रूहानी वर्ल्ड के है ना, तो वो आ रहे होते थे और नबी अलैहिस्सलाम के अंदर किसी तरह से उस वही को ब्लो कर रहे होते थे, फूक रहे होते थे, ठीक है, आप सल्लम के अंदर, ठीक है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो फिजिकल वर्ल्ड की चीज तो नहीं है ना, वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज को अपने अंदर लेकर के आ रहे होते थे और नबी अलैहिस्सलाम के अंदर उसको ब्लो कर रहे होते थे, फूक रहे होते थे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अल्लाह ताला जो है वो रूहों को फरिश्ते के साथ भेजते हैं और रूह जो है फिर यहाँ पर आकर के फूकती है उसको। बहरहाल वो अलग डिस्कशन है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत की वजह से आपको जो उनसे तवक्को थी, इसकी वजह से आप इस वक्त हालत गैरत में थी, वो दूसरी बात थी जो कि अभी मैंने बयान करनी थी, ठीक है। कि एक तो ये थी कि उन्होंने जो है उनके ऊपर ये हाल और ये कैफियत तारी हुई भी थी, क्योंकि मखलूक से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल काट लिया था और खालिक के साथ जोड़ा हुआ था। और दूसरी वजह यह भी थी कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ ना उनको एक दर्जे की ऐसी मोहब्बत थी कि इस मोहब्बत के अंदर जो है ना वो उनको नबी अलैहिस्सलाम से एक, इसको कहते हैं ना मोहब्बत वाली शिकायत होती है, जैसे पीछे भी हम बात कर चुके हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन से भी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन को एक मुहब्बाना शिकायत थी कि भाई आप तो मेरे दोस्त, आप तो ईमान वाले थे, है ना, आप तो जो है वो हमारे खानदान के फर्द थे, तो आपने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम तो आपने जो है वो ऐसे क्यों नहीं कहा कि हो ही नहीं सकता, बल्कि आपने कहा कि बरीरा से आप मशवरा कर लें और अगर आप चाहें तो जो है वो किसी और से भी शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी और अपने वालिद साहब के साथ भी आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा को एक शिकायत थी इस वक्त, जिसका कि आगे जिक्र आएगा, ठीक है ना, कि भाई आपने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि हो ही नहीं सकता कि आयशा ऐसा कोई काम करे, ठीक है ना। अच्छा, तो आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो इस तरीके से कहा था ना कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा, इसको कहते हैं नाज। क्या कहते हैं इसको उर्दू में? इसको कहते हैं नाज, और एक और भी लफ्ज है जो कि ज्यादा अदब वाला लफ्ज नहीं है, नहीं फखर नहीं, नाज और शनाज, शनाज आंटी नहीं, दूसरा वर्ड है जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते अदब की वजह से, नाज के अंदर बेअदबी नहीं है, नाज में एक अदब का भी मौत है, उसको कहते हैं नखरे, ठीक है ना, नाज और नखरे, ठीक है। तो नखरे जो है ना वो तो बच्चे अपने अम्मी अबू के साथ करते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए कह भी सकते हैं नखरे कर रहा है और खाना है, भूख लग रही है लेकिन नहीं खाना, है ना, क्योंकि नखरे करने हैं, बस बस चाहता ये है कि अम्मी जो है ना वो थोड़ा और जो है ना वो मेरे पीछे लगे, मुझे अम्मी की थोड़ी और अटेंशन चाहिए, मुझे अम्मी का थोड़ा और प्यार मोहब्बत चाहिए, तब मैं खाऊंगा। हालांकि अंदर भूख लग रही है ना, खाने खाने की तलब है, लेकिन नहीं नहीं खाएगा। इसको कहते हैं नखरे करना, ठीक है ना। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, उम्र में बड़े हो जाते हैं या नेकी के अंदर बड़े हो जाते हैं, जैसे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, नेकी के अंदर सबसे ऊंचा मुकाम, ठीक है ना, तो उस वक्त जब इस किस्म की चीज करते हैं ना, तो उसके लिए नाज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम से आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को इंतहाई मोहब्बत थी, और जब दिल के अंदर मोहब्बत हो लेकिन ऊपर से उसका इजहार ना हो रहा हो, दिल में मोहब्बत। अब चलिए ठीक है ना, आवाज उसकी वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, क्या हुआ, छोड़ दें उसको, अगर नहीं आप खुद चला करके फिर उसके बाद दीजिएगा। तो जब दिल में मोहब्बत हो लेकिन ऊपर से जो है ना, वो मोहब्बत का इजहार नहीं हो रहा हो, बल्कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं शुक्रिया अदा करूंगा, तो इसको कहते हैं नाज दिखाना, ठीक है ना। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को नाज भी था, महबूबाना नाज नबी अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। बहरहाल तो ये बात हो गई। अब इसके बाद जो है वो हम उन आयात के ऊपर आते हैं जो कि अल्लाह ताला ने आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बराअत के अंदर नाजिल फरमाई। इससे पहले यहाँ पे जो पैसेज आए हुए हैं, अटेंशन सीकर होते हैं बच्चे, जी बिल्कुल, इसी वजह से वो नखरे कर रहे होते हैं। बीवी भी शौहर की अटेंशन सीकर होती है, ठीक है ना, उसको भी अटेंशन चाहिए भाई अपने शौहर की, ठीक है ना, जितनी मिलती है उससे ज्यादा चाहिए, अच्छा और दे दो उससे भी ज्यादा चाहिए, और दे दो, इस वजह से बीवी के अंदर भी नाज होता है, ठीक है। अच्छा, शौहर से नाज वाला ताल्लुक भी होता है वाइफ का, जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, ऐसे ही है, ठीक है। नाज और नखरे इन्होंने पहले से लिख दिया था, नखरे वाला लफ्ज। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने ना फिर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए जो आयात नाजिल फरमाई है ना, ये बहुत जबरदस्त, जाहिर है अल्लाह का कलाम भी है, कुरान मजीद की आयातें तो जबरदस्त तो है ही, लेकिन हमारे लिए इसके अंदर ऐसे जबरदस्त लेसन हैं कि इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गो ओवर देम, ठीक है ना, इस क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आयात कौन सी सूरत के अंदर है, सूरह नूर की आयात है, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लजीना जाऊ बिल इफ, भाई यार बंद कर शट ऑफ, इन्नल लजीना जाऊ बिल इफ के उसबतुम मिनकुम, बेशक वो लोग जो कि इस झूठे बोहतान के साथ आए थे ना, ठीक है ना, ये तुम लोगों में से एक गिरोह था, उसबा कहते हैं एक गिरोह, स्मॉल ग्रुप, ठीक है ना, या बड़ा ग्रुप हो स्मॉल ग्रुप हो, और डिटेल है इसमें, तो ये तो एक ग्रुप था लोगों का, तुम लोगों में से, ठीक है ना। ला तहसबूहु शर्रन लकुम, तुम इस पूरे के पूरे फितने को, जो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन तुम्हारे लिए पैदा हो गई थी ना, 1 महीने तक ये सब मामला चलता रहा, सब परेशान हैं, औरतें रो रही हैं, हत्ता के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जैसे जिबाल जो है ना, वो भी आंसू आने शुरू हो गए, उनको भी नबी अलैहिस्सलाम भी मुतासर हो गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो के ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, अर्श से सब कुछ देख रहे हैं, उनको कुछ और नजर आ रहा है ना। हम यहाँ पे बैठे हुए जो चीजें देख रहे होते हैं ना, हमें वो चीजें नजर नहीं आ रही होती, अगर ऊपर से कोई बैठ करके देखना शुरू करते उसको ऐसी चीजें नजर आएंगी, है ना। ये हमारे स्कूल में बहुत होता था कि जैसे आप लोग बैठे हुए ना क्लासरूम के अंदर, अब कोई बच्चा जो है ना वो कुछ करना शुरू करते हैं, जैसे आप लोग भी कभी कभी कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं, कभी कोई हंसना शुरू कर देता है कुछ, अच्छा वो बैठा हुआ समझ रहा होता है कि टीचर को तो पता ही नहीं लग रहा कि वो क्या कर रहा है ना, मैं तो छुप करके कर रहा हूँ, टीचर को कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन टीचर जिस पोजीशन पे बैठा होता है ना, वहां से उसको सब नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो हमेशा टीचर को पता चल जाता था कि कौन क्या कर रहा है, वो फिर आगे से डांटते भी थे या कभी जो वो सजा भी दे देते थे, आप उठ करके बाहर चले जाएं, ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो टीचर से भी ज्यादा खालिक है ना, सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, अलीम बिजात सुदूर है, दिलों के हाल भी जानते हैं अल्लाह ताला, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो इतनी मुश्किल सिचुएशन तुम्हारे ऊपर आ गई है ना, तुम इसको अपने लिए बुरा मत समझो, बल्कि अपने लिए खैर समझो इसको। अजीब, इंसान हैरान होता है, इतनी तकलीफ, इतनी टेंशन, इतनी, और उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे लिए शर नहीं है, तुम्हारे लिए खैर है, ठीक है, बल हुआ खैर उन लोगों, ये तो तुम्हारे लिए बेहतर चीज हुई है, ठीक है। हमारे ऊपर भी कोई तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, हम समझते हैं कि बस दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, अब तो नहीं बचेंगे. जबकि बड़े हमें कह रहे होते हैं इसमें यकीनन कोई ना कोई मसलियत होगी, कोई खैर होगी, कोई तुम्हारे लिए फायदा होगा, तुम सब्र करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र के ऊपर इतना बड़ा इनाम अता फरमाएंगे, है ना, तुम्हारे लिए कोई लर्निंग कर्व होगा, तुम कुछ सीखोगे इसके जरिए से जो कि तुम्हें फिर आइंदा जिंदगी के अंदर काम आएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं और ईमान वालों को बता रहे हैं कि इसको तुम अपने लिए बुरा ना समझो, ये तो तुम्हारे लिए खैर है. लिकुल इम्रिम मिन्हुम मक्तसबा मिनल इस्म, ठीक है, हर बंदे के लिए उनमें से वही है जो कि उसने गुनाह में से कमाया. ठीक है, जिन लोगों ने गुनाह किया ना, तो जिसने जितना बड़ा गुनाह किया उसके लिए उतना ही सजा है. अल्लाह ताला की सजा है हर गुनाह की. ठीक है, वल्लजी तवल्ला किबरहु मिनहुम, और उनमें से जिसने इस चीज को शुरू किया, ठीक है ना, जिसने ये बात करने शुरू करी थी वो कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिकीन का सरदार. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ही टुक द होल द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, है ना, तवल्ला किबरहु मिनहुम, उसने सबसे ज्यादा इसकी विलायत का बोझ उठा लिया, है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा उस बंदे ने उठा ली जिसने इसको शुरू किया है. ठीक है, तो लहू, अच्छा लहुम नहीं फरमाया, जो अरबी बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो लहुम और लहू में फर्क क्या है? लहुम का मतलब होता है वो सब के सब, उनके लिए, उन सब के लिए. अल्लाह ताला ने फरमाया लहू उसके लिए, ही इज द वन, वो एक ही है कमबख्त बदबख्त, है ना, जिसने जो है ना ये सारा का सारा शुरू किया था, वो एक ही है, और वो कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई था. ठीक है, तो लहू अजाबुन अजीम, उसके लिए तो अजीम अजाब है जिसने इसको शुरू किया और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ली, इसके लिए. इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र रहनी चाहिए हर वक्त कि हम कोई बुरा काम शुरू करने वालों में से ना हो जाए, है ना, हम कोई चीज यानी इब्तिदा करने वालों में से ना हो जाए. क्योंकि जो इब्तिदा करने वाला होता है ना गुनाह की, तो अब जितने लोग उस गुनाह को करेंगे उन सब का गुनाह भी इसको मिल रहा होता है और इसका अपना गुनाह भी इसको मिल रहा होता है. ठीक है, तो ये नहीं है कि किसी कोई ऑलरेडी किसी ने इब्तिदा करी हुई है तो अब उसमें शामिल हो जाए तो चलो छोटा गुनाह मिलेगा, कम गुनाह मिलेगा, नहीं, हमने तो उसमें भी शामिल नहीं होना, लेकिन शुरू तो हमने हरगिज नहीं करना. ठीक है ना, इसी वजह से ना कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा उन स्मार्ट बनने का बड़ा शौक होता है, बहुत स्मार्ट बनने का, दे वॉन्ट टू बी द फर्स्ट. ठीक है ना, तो भाई फर्स्ट होना जो है ना, अगर तो आप 100% श्योर हैं कि अच्छाई के अंदर फर्स्ट हो रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन एक आदत बन जाती है कुछ लोगों को और उनको बड़ा मजा आता है जस्ट बीइंग फर्स्ट इन एवरीथिंग, हर चीज में वो फर्स्ट होने की कोशिश करते हैं, और ये जो उनकी आदत होती है ना, ये फिर शैतान के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि शैतान उनको फिर बुराई के अंदर भी फर्स्ट करवा देता है, वो बुराई में भी जो है ना वो फर्स्ट बनना शुरू हो जाते हैं, क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं. मिसाल के तौर पर चंद दोस्त बैठे हुए हैं और जो है ना वो आराम से कोई सीधी सादी सी अच्छी बातें कर रहे हैं, अब इसको मजा नहीं आ रहा, यार ये क्या है, हम कोई कुछ कर क्यों नहीं रहे, है ना, कोई अच्छी बात क्यों, हम कोई ज्यादा मजा क्यों नहीं आ रहा, हमें बोर हो रहे हैं. ठीक है ना, तो अब जो कहे ये कहेगा कि यार दिस इज मतलब टू बोरिंग, ये बहुत बोरिंग है, ये हम मजे क्यों नहीं कर रहे. ठीक है ना, तो अब ये क्या करेगा, इधर से कोई बंदा गुजर रहा होगा ना, कोई बच्चा गुजर रहा होगा, कोई आंटी गुजर रही होंगी, कोई अंकल गुजर रहे होंगे, अब जो है ना ये कोई बात करेगा उनके खिलाफ या उनको किसी तरीके से जो है ना वो तकलीफ पहुंचाएगा, पत्थर मारेगा या कोई बुरी बात उनके बारे में करेगा. ठीक है ना, जिससे जो है ना फिर बाकी जितने बच्चे बैठे हुए थे ना वो हंसना शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद दूसरा बच्चा भी उसके आगे से कोई गंदी बात करेगा, तीसरा बच्चा भी कोई गंदी बात करेगा, कोई जो है वो उनको किसी तरीके से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा. ठीक है ना, शुरू किसने किया? इस स्मार्ट फेलो ने शुरू किया, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है. अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जो था, इसका भी यही मामला था, ये भी जो है ना ये उन्हीं लोगों में था जो कि अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं. ठीक है, देखिए आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये अपने आप को स्मार्ट नहीं समझती थी कि मैं तो सच्ची हूं और आखिर को मैं नबी अलैहिस्सलाम की बीवी हूं और मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूं, तो मेरी बराअत में तो यकीनन अल्लाह ताला कुरान मजीद की आयात नाज़िल फरमाएंगे क्योंकि मैं हूं इतनी स्मार्ट। आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसे सोचा, बल्कि आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने समझा कि बस अल्लाह ताला किसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाल देंगे और अल्लाह ताला फिर मुझे इस तोहमत से जो है वो बरी कर देंगे। शी डिड नॉट थिंक हाई ऑफ हरसेल्फ, ठीक है ना। लेकिन जो स्मार्ट बनने की कोशिश करने वाले लोग होते हैं ना, दे ऑलवेज थिंक वेरी हाई ऑफ देमसेल्व्स, और ये चीज उनको ले डूबती है, दुनिया में भी उनको जलील और रुस्वा करवा देती है और आखिरत के अंदर भी उनको जलील और रुस्वा करा देती है। लीडर बनते हैं, है ना, मुल्क के अंदर वो इंकलाब लेकर के आएंगे, लीडर बनेंगे, है ना। अब वो लीडर बनने के लिए समझते क्या है, शैतान उनको फिर आकर के धोखा देता है, तुम लीडर बनो हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, सारा मुल्क तुम्हारा साथ देगा, सब लोग तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आई भी ना, डोंट वरी, वी विल ऑल टेक केयर ऑफ इट, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे और हम तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। होता क्या है, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है ना तो तकरीबन सारे भाग जाते हैं, और जो नहीं भाग सकते वो भी उसी के साथ मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं, है ना। और वो जो स्मार्ट फेलो था ना, जो समझ रहा था कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ और मुझे तो सब मदद भी करेंगे और जो है ना मैं जो है ना दुनिया में सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है ना, तो वो बेचारा क्या होता है, वो थोड़े दिन के बाद जो है वो गायब हो जाता है या किसी दूसरे मुल्क चला जाता है। हमारे यहाँ एक मुल्क है दुनिया के अंदर जहाँ पे हमारे सारे भाग जाते हैं उधर, ठीक है, जितने इस तरह के स्मार्ट फेलोज होते हैं ना वो उधर ही जाकर के बिलाखिर वहीं पे उनका अंजाम होता है, ठीक है। तो भाई ये दुनिया जो है ना ये इसलिए नहीं बनाई गई है कि हम यहाँ पर आकर के स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करें, ये दुनिया बंदगी के लिए बनाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया के अंदर जो है ना वो बंदगी के लिए भेजा है, खुदा बनने के लिए नहीं भेजा। दुनिया को ठीक करना किसका काम है, दुनिया को ठीक करना, चीजों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना, सारी बुराइयां खत्म कर देना, ये हमारे बस में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के करने का काम है, वो है खालिक, वो है मालिक। हम तो क्या है, हम तो बंदे हैं, हमारा क्या काम है, बंदगी करना बस। और बंदगी का मतलब क्या होता है, जो अल्लाह का हुक्म है, कंफर्म्ड हुक्म, ये नहीं मेरे दिमाग में कोई हुक्म बन गया अल्लाह ताला का, है ना, कि अब मैंने इसको मारना शुरू कर देना है, अल्लाह का हुक्म आया मैं इसको मारूंगा, कहां से अल्लाह का हुक्म आया कि मैं इसको मारूं, कुरान से साबित है ये हुक्म कि मैं इसको मारूं, हदीस से साबित है कि मैं इसको मारूं, या उलमाए कराम का इजमा, जिसको कंसेप्ट अब बच्चों से कभी कभी हमारी क्लास बड़ों के लिए भी बताती है, ठीक है, तो इजमा है, यानी उलमाए कराम ने मुझे बताया कंसेंसस करके कि भाई इसको मारो, नहीं उलमा ने भी नहीं बताया कि इसको मारो, ठीक है ना, इसको बंदगी नहीं कहते। बंदगी तो वो होता है कि अल्लाह ताला का हुक्म आया है उसके ऊपर मैंने अमल करना है, ये बंदगी है, और मुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा अच्छा कोई बंदा इस दुनिया में हो सकता था, ठीक है ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने आकर के क्या पूरी दुनिया को ठीक कर दिया है, यूरोप ठीक हो गया था नबी अलैहिस्सलाम के वफात से पहले, अफ्रीका ठीक हो गया था नबी अलैहिस्सलाम के वफात से पहले, इंडिया मुसलमान हो गया था, हिंदू सारे मुसलमान हो गए थे नबी अलैहिस्सलाम के वफात से पहले। जब नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आकर के हिंदुस्तान को मुसलमान नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यूरोप को मुसलमान नहीं किया, अफ्रीका को मुसलमान नहीं किया, और जहां भी और दूसरे लोग इंसान रहते थे, तो कोई दूसरा इंसान कर सकता है ये वाला काम, कि दूसरा इंसान जो है वो सबको ठीक कर सकता है, नहीं कर सकते हम, ये भाई अल्लाह का करने का काम है, लेट अल्लाह डू इट। तुम्हें तो बंदगी के लिए पैदा किया है, स्मार्ट बनने के लिए पैदा नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो हमें बंदगी सीखने की जरूरत है, स्मार्टनेस सीखने की जरूरत नहीं है। स्मार्टनेस का मतलब यहाँ पे मैं बहुत नेगेटिव वाली चीज की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप बुद्धू बने रहें, बुद्धू बनने के लिए भी हमें नहीं पैदा किया गया दुनिया के अंदर। बुद्धू समझते हैं क्या होता है ना, जो कोई अपनी अकल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता उसको बुद्धू कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए भी नहीं पैदा किया गया, और ना जो है ओवर स्मार्ट बनने के लिए पैदा किया गया, ठीक है। वी केम इन दिस वर्ल्ड फॉर इबादत, मीनिंग अल्लाह की बंदगी। जी माशाल्लाह, टाइम कितना भी हमारे पास खत्म हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो शख्स था ना, वल्लजी तवल्ला मिन किबरहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, ये तो सबसे ज्यादा पिटाई होगी इसकी, इस वाले शख्स की जो सबसे ज्यादा दुष्पाण बनता था। अच्छा, लौला इज समितुमुहु, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुम लोगों ने जो है ना उसको सुना, ठीक है, ज़न्नल मुमिनी मुमिनूना वल मुमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरा, तो जो ईमान वाले थे यानी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानने वाले वो ईमान वाले होते हैं, राइट। तो जो ईमान वाले मर्द थे और जो ईमान वाली औरतें थी ना, तो उन्होंने अपने साथ अच्छा गुमान क्यों नहीं किया, अपने साथ अच्छा गुमान क्यों नहीं किया। अजीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ना वो अजीब अल्फाज इस्तेमाल किया, गुमान किसके साथ अच्छा करना था, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अच्छा गुमान रखना था, और जो है वो जो क्या नाम था उनका, सफवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके साथ अच्छा गुमान रखना था। लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि ईमान वाले मर्दों ईमान वाली औरतों को, तो इन दोनों ईमान वालों के साथ अच्छा गुमान रखना था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वाले मर्दों और औरतों ने अपने साथ अच्छा गुमान क्यों नहीं रखा, है ना, बी अनफुसहिम खैरा, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर हमारे उलमाए किराम ने बात समझाई कि देखिये, जब मोमिनीन किसी दूसरे मोमिनीन के खिलाफ बदगुमानी करते हैं ना, दूसरे ईमान वालों के साथ बदगुमानी करते हैं, तो दरअसल इसका नुकसान सारे ईमान वालों को होता है, ठीक है, उनको खुद भी इसका नुकसान हो रहा होता है जब वो किसी दूसरे ईमान वाले के साथ बुरा गुमान कर रहे होते हैं या किसी दूसरे ईमान वाले को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ला तक्तुलू अनफुसकुम, एक और जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सब ठीक पढ़ो, ला तक्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को तुम कत्ल मत करो। इस आयत का यह मतलब नहीं है कि तुम खुदकुशी मत करो, ये मतलब नहीं है, बल्कि मतलब यह है कि ए ईमान वालों, तुम दूसरे ईमान वालों को कत्ल ना करो, क्योंकि जब तुम उनको कत्ल करोगे ना तो उसका असर तुम्हारे ऊपर भी आएगा, तुम भी कत्ल किए जाओगे। दुनिया में अगर कत्ल नहीं किए गए सजा के तौर पर, आखिरत में कत्ल किए जाओगे, ठीक है ना, तुम्हें भी नुकसान होगा, तुम्हारे पूरे सोसाइटी को नुकसान होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ना वर्ड बदल देते हैं और उस वर्ड के अंदर कितनी सारी डिटेल और गहराई शामिल हो जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि भाई जब उसने जो है ना वो तुम लोगों के बारे तुम लोगों से ऐसी बातें करी थी ना, तो क्यों नहीं कह दिया, क्यों नहीं तुम लोगों ने अच्छा गुमान रखा, ठीक है। वकालू हादा इफ्कुन मुबीन, और ये क्यों नहीं कहा कि ये तो खुला हुआ झूठ है, ये तो बिल्कुल बोहतान है, ये तो स्लैंडर है, ये तो, ठीक है, ये क्यों नहीं कहा तुम लोगों ने, सही है। अच्छा, और क्या कहा इन्होंने, स्मार्ट फेलो गुनाह जारिया स्टार्ट करवा देता है। जी, स्मार्ट फेलो जो होते हैं ना वो फिर अकेले गुनाह नहीं करते, वो सबको गुनाह पे लगाते हैं, अगर सबसे पहले कोई भी गलत बात स्प्रेड करे। जी, वी केम इन दिस वर्ल्ड फॉर, हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब मोमिन सब एक ही होते हैं। जी बिल्कुल, ये मतलब है, एक जिस्म की मानिंद होते हैं, जब किसी एक हिस्से में दर्द हो तो सारे बदन में दर्द होता है, ठीक है। हाँ, ये भी हदीस मुबारक है कि जब मोमिन की मिसाल तो एक जिस्म की मानिंद है, उसके एक हिस्से में दर्द होता है ना तो पूरे जिस्म को दर्द महसूस होता है। तो अगर तुम मिसाल के तौर पर, ये मेरी उंगली है, ठीक है ना, अब मैं अगर अपने इस उंगली को काटना शुरू कर दूं तो क्या खाली इस उंगली को तकलीफ होगी, बल्कि तकलीफ पूरे के पूरे मुझे तकलीफ होगी, राइट। तो यही फरमाया कि नहीं, तुम अपने आप को तकलीफ मत दो ये समझते हुए कि सिर्फ तुम्हारे एक जुज को तकलीफ होगी, नहीं, यू आर वन बॉडी, तुम तो पूरे के पूरे एक हो, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी आयत और पढ़ के, वरना तो बहुत सारी हैं, क्लास खत्म करते हैं आज की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लौला जाउ अलैहि बिअरबति शुहदा, ठीक है, कि अगर आते तुम्हारे पास चार गवाह, ठीक है, इस किस्म का जो इल्जाम होता है ना दूसरों के ऊपर लगाना, शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि उस वक्त तक इस इल्जाम के ऊपर आप कान ही ना धरें, सुना ही नहीं बिल्कुल, जब तक आपके पास चार विटनेसेस लेकर के होना आ जाए, ठीक है। आगे फरमाते हैं, फइज लम यातु बिश्शुहदाई फउलाइक इंदल्लाही हुमुल काज़िबून, तो अगर कोई ये चार गवाह लेकर के नहीं आता ना, तो अल्लाह ताला के नजदीक वो झूठा है, ठीक है ना, काजिब है, वो लोग काजिब हैं, झूठे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसूल बना दिया बस, ठीक है ना, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने किसी को गुनाह करते हुए देखा हुआ भी है ना, कीप योर माउथ शट, समझते हैं बात को, उर्दू में भी अपनी जुबान को बंद रखो बेशक तुमने किसी को गुनाह करते हुए देखा हो, कीप योर माउथ शट, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास चार गवाह हैं तब तो तुम बात करो, वरना शट अप। समझते हैं शट अप का मतलब क्या होता है, कभी अम्मी बोलती है शट अप, ठीक है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं गोया के शट अप, ठीक है। अब रहना नहीं अभी, आप क्लास खत्म करनी है, मुझे पता आपने कोई उल्टा सीधा सवाल करता है। तो आगे फरमाते हैं कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फिद्दुनिया वल आखिरा लमस्सकुम फी मा अफ़ज़तुम फीहि अज़ाबुन अज़ीम। अगर अल्लाह ताला का तुम्हारे ऊपर फजल नहीं होता ना दुनिया और आखिरत के अंदर, तो तुम्हें जो है ना वो बहुत बड़ा अज़ाब जो आकर के छू लेता, ठीक है ना। बिकॉज तुम लोगों से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तुम लोगों ने उस शख्स को झूठा करार नहीं दिया और तुमने जो है ना वो उसके खिलाफ बात नहीं करी, बल्कि तुम लोग खामोश हो गए, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था, इस वजह से ईमान वालों को पता ही नहीं था हाउ टू रिएक्ट, ठीक है। अल्लाह ताला सिखा रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला का जो कलाम है, अल्लाह ताला की किताब है, ये ईमान वालों को सिखाने के लिए आई है, ट्रेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए आई है। अगर पहले से सब कुछ पता होता तो बात आपको पता है, ये बात अगर पहले से सब कुछ आता है तो सिखाने की क्या जरूरत है ना। तो अल्लाह ताला सिखा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह ताला तुम्हें माफ नहीं करते ना, तो फिर तो तुम लोग सारे के सारे गए थे, ठीक है। चलिए बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जरा तर्जुमे में भी थोड़ा सा पहले से आप लोगों के लिए तैयार करके लें तो ज्यादा अच्छा है। बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश थे। हाँ, इन्होंने सवाल किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई बात नहीं कही, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना वो एक एक्चुअली इसका एक लंबा जवाब है, लेकिन अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसका जवाब है नबी अलैहिस्सलाम भी खामोश रहे, ठीक है ना। जब मशवरा हो गया तब तो मिंबर पे जाकर के खड़े होकर खिताब किया था, लेकिन उससे पहले खामोश रहे थे, ठीक है ना। हत्ता के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला भी खामोश रहे, ठीक है। तो सवाल पैदा होता है भाई क्यों खामोश रहे, है ना। उन्होंने पहले से क्यों नहीं कह दिया कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, उसके रीजन है, तो वो इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।
Recording stopped.